जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदरा राधा श्याम सुंदरा राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 कल पावन हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथ राशि मद्भागवतम की श्रीप्रभुपाद की जय निधाय गौर भयमानंदी सामवेद भक्तुंद की सामवेद भक्तुंद की सामवेद भक्तुंद की जय श्री श्री गुरु और गौरांग की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सो हरे कृष्णा। आज हम चैतन्य चरितामृत जो है आदि लीला दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 29 लेंगे। इहोत द्विभुज तिहो धरे चारि हात इहो वेणु धरे तिहो चक्राधिक साथ इहोत द्विभुज तिहो धरे चारि हात इहो वेणु धरे तिहो चक्र दीक सात इहो तद्विभुज तिहो धरे चारि हात इहो वेणु धरे तिहो चक्र दीक सात। इहो तद्विभुज तिहो चक्रात इहो वेणु धरे तिहो चक्राधिक साथ इहो तद्विभुज तिहो धरे चार हाथ इहो वेणु धरे तिहो चक्राधिक साथ इहो तु द्विभुज तिहो धरे चारि हात इहो वेणु धरे तिहो चक्राधिक स्यात इहो द्विभुज तिहो धरे चारि हात इहो वेणु धरे तिहो चक्राधिक माताजी इहो तद्विभुज तिहो धरे चारि हात इहो वेणु धरे तिहो चक्राधिक सात इहो तद्विभुज तिहो धरे चारि हात इहो वेणु धरे तिहो चक्राधिक ये द्विभुज द्विभुजधारी तिहो वे धरे धारण करते हैं चारी चार हाथ भुजाएं इहो ये वेणु बांसुरी धरे धारण किए हैं तिहो वे चक्र आदि का चक्र आदि साथ के सहित। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला एसी भक्ति वेदांत संश्रुपात की अनुवाद। इन ईश्वर श्री कृष्ण के दो हाथ हैं और वे मुरली धारण करते हैं जबकि दूसरे नारायण के चार हाथ हैं जिनमें वे शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण करते हैं। तात्पर्य, नारायण श्री कृष्ण से अभिन्न है, वस्तुतः वे एक ही व्यक्ति है जो भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। जिस प्रकार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने कार्यालय तथा अपने घर में भिन्न भिन्न रूप में रहता है, नारायण रूप में ईश्वर चार भुजाओं से युक्त होते हैं, जबकि कृष्ण रूप में वे दो हाथों से युक्त होते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय का जो शीर्षक है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो प्रभुपाद जी इसके पहले जो इंडेक्स में बताते हैं कि इस अध्याय में प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर एक व्यक्ति को भक्ति में अगर प्रगति करनी है तो एक व्यक्ति को कृष्ण भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उनके जो शक्तियां हैं और उनका भौतिक जगत में जितने भी जीवात्माएं हैं, जैसे हमारा भगवान के साथ संबंध क्या होना चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है, मुक्तिर हित्वा अन्यता रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति। तो मुक्ति का मतलब है, अन्यथा रूपम का मतलब है, अभी यहां प्रभुपाद जी वर्णन दे रहे हैं, जैसे एक हाई कोर्ट का प्रभुपाद जी न्यायाधीश के बारे में लिखते हैं कि न्यायालय में आप देखते हैं वो काले कपड़े डालते हैं कि नहीं, वो सब अंग्रेज जमाने का है जो भी है, और घर में जैसे उसको जैसे अच्छा लगे, ठीक है। अभी जैसे फौज में मैं था, नेवी में, तो वहां 12 प्रकार के ड्रेस होते हैं, 12, चलो जो भी। तो एक व्यक्ति आप देखेंगे कि कोई स्पोर्ट्समैन है, उसका स्पोर्ट्स खेलता है तो उसका वस्त्र अलग होता है, घर में कुछ अलग होता है, पार्टी में जाएगा कुछ वस्त्र अलग होता है। तो इसी प्रकार यहां बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण और नारायण वो दोनों एक ही है। जैसे शंकराचार्य उनका एक श्लोक आता है, नारायणो परो अव्यक्तात्, ऐसे कृष्ण भगवान के दो रूप है, एक है वृंदावन का जो रूप है उसको कहते हैं नंद नंदन कृष्ण यशोदा कृष्ण, जिसको हम लोग श्याम सुंदर कहते हैं, ठीक है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी इसका उल्लेख करते हैं। और दूसरे जो कृष्ण है जो चार भुजा वाले है वो है देवकी नंदन, वसुदेव के जो पुत्र है वो चार भुजा वाले हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो सबसे छोटा ब्रह्मांड है। जैसे आप कोई सब्जी मंडी में जाओ, अगर आलू कोई भी फल लेते हैं तो उसमें 4-5 कैटेगरी के होते हैं। हाँ, आप लोगों ने आलू सुना होगा, दम आलू, पता नहीं कितने लोगों ने खाया है। हाँ, उसमें खाने में दम लगता है क्या, पता नहीं, पता नहीं किसने नाम दे दिया दम आलू। तो आप देखते कि छोटे छोटे आलू होते हैं, ग्रेवी बना के उसमें वो उसको स्टीम करके डाल देते हैं। तो हमारा ब्रह्मांड जो है वो सबसे छोटा है, और हमारे जो ब्रह्मा जी वो चार सर वाले हैं, और बाकी ब्रह्मांड में अगर आप देखेंगे 8 सर वाले, 16, 32, 64, फिर 100, 500, 1000, 10000, 1,00,000 सर वाले भी ब्रह्मा होते हैं। हमने तो देखा नहीं, लेकिन चैतन्य चरितामृत में लिखा है, ठीक है। तो अभी यहाँ कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि अभी उन्होंने बहुत इसमें जितने भी श्लोक्स बताए हैं तो इतना आसान नहीं है इसको दिमाग में उतारना, तो प्रयास करेंगे समझाने का। कि यहाँ यही बताया गया है कि ईश्वर कृष्ण के दो हाथ हैं और वे मुरली धारण करते हैं, जबकि दूसरे नारायण वे चार हाथ वाले हैं जिसमें वे शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण करते हैं। तो एक श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हैं, उसका नाम है मुंडक उपनिषद। तो उस मुंडक उपनिषद में एक श्लोक आता है, यस्मिन विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। इसका मतलब है कि जब एक व्यक्ति परम सत्य को जान लेता है यानी कृष्ण को, उसे सब कुछ समझ में आता है। स्वयं श्री कृष्ण हमें परम सत्य का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यहाँ जैसे आप कभी रसोई बनाते हैं तो रसोई में क्या होता है कि जब अगर आपको देखना है अनाज पक गया, चावल है, दाल है, तो आप एक अनाज को लेके हाथ में दबा के देखते हैं, सब हाथ में, ऐसे तो हाथ जल जाएगा, तो केवल एक चम्मच पर लेके हम एक दबा के देखते हैं ये पक गया है कि नहीं, उससे पता चलता है कि बाकी सब चावल पक गए। तो इसी प्रकार यहाँ ये बताया है कि अगर हमने कृष्ण को समझ लिया तो बाकी हमें दूसरा को समझने का जरूरत नहीं है। कभी कभी आप दुकान में जाते हैं, मिठाई की दुकान में, कहते थोड़ा सैंपल दो, तो क्या वो दोनों मुट्ठी भर के देगा क्या? नहीं, थोड़ा सा सैंपल देगा है कि नहीं। तो आप सोचेंगे भाई चलो कौन सा आपको पसंद है, ठीक है। तो यहाँ यही बताया गया है कि अगर हमने कृष्ण भगवान को समझ लिया बाकी दूसरा फिर कुछ समझने की जरूरत नहीं, जितने भी देवी देवता से लेके कौन क्या कार्य कर रहे इनको समझने की जरूरत नहीं। तो भगवान के जो है तीन प्रकार, कृष्ण के प्रकार बताए हैं, पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम। तो कविराज गोस्वामी चैतन्यचरितामृत के मध्य लीला में एक श्लोक बताते हैं, व्रजे कृष्ण सर्व ऐश्वर्य प्रकाशे पूर्णतम, पुरी द्वये परयोम पूर्णतर पूर्ण। वो बताते हैं कि कृष्ण भगवान जो है वो वैकुंठ में पूर्ण है, मथुरा और द्वारका में पूर्णतर है। मथुरा और द्वारका ने भगवान जब वृंदावन से मथुरा द्वारका जाते हैं, लेकिन वृंदावन में वो क्या है, पूर्णतम संपूर्ण है। जैसे ब्रह्मा जी में कितने गुण है किसी को मालूम है? ब्रह्मा जी के अंदर कितने गुण है? 50 गुण है, ठीक है। शिव जी के अंदर कितने गुण है? हा कितने? 55। विष्णु जी के अंदर कितने गुण है? 60। हाँ, कृष्ण के अंदर चार अधिक गुण है जिसको माधुर्य कहा जाता है। वृंदावन के जो रूप गोस्वामी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, और सबसे जो ऊंचा है वो है रूप माधुर्य। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। तो कृष्ण भगवान का ये जो रूप है वो इतना स्पेशल है कि जो कामदेव है, हाँ, वो कोटि गुना में अगर कामदेव तो अभी आएंगे तो भगवान से उनको हम तुलना कर नहीं सकते। तो आगे कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि यही कृष्ण व्रजे पूर्णतम भगवान आर सब स्वरूप पूर्णतर पूर्ण नाम। तो बता रहे हैं कि ये जो कृष्ण है ये पूर्णतम है, और बाकी भगवान के जहां भी जितने भी उनके विस्तारित रूप है उनके अंदर उनके कुछ अंश अंश अवतार हैं। तो आगे अगर आप देखते हैं कि भागवतम में जब नैमिषारण्य में सारे ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से जिज्ञासा किया था, उन्होंने बताया था कि भगवान के जितने भी अवतार हैं उनके बारे में बता दो, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक बताया है, एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम मृदयन्ति युगे युगे। तो यहाँ सुध गोस्वामी उन्होंने 22 भगवान के अवतारों का वर्णन किया है, अभी समय नहीं बताने का। तो बताते कि यहाँ वो बताए कि भगवान के जितने भी अवतार हैं ये छोटे छोटे भगवान के अवतारों के अवतार हैं, लेकिन वो क्या बताते हैं कि भगवान क्या है, कृष्ण भगवान क्या है, वो पूर्ण है। एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अभी आप लोगों ने अगर भगवत गीता पढ़ा है तो भगवत गीता में कितने बार व्यास देव जी ने श्री भगवान उवाच, चलो अभी थोड़ा टेस्ट करते हैं, तो श्री भगवान उवाच करके कितने बार आता है भगवत गीता में? आप लोगों ने सबने गीता पढ़ी है, हाँ चलो ग्रेट, चलो प्रभु जी को ताली बजाओ। हाँ, श्री भगवान उवाच। अभी भगवान का जो ये है विष्णु पुराण में जो है भगवान का जो है डेफिनेशन दिया है, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीरस्य, तो भगवान के षड ऐश्वर्य जो है वो बताए विष्णु पुराण में। तो अभी यहां हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि कृष्ण जो है वो पूर्ण है। ऐसे भगवान के तीन पूर्ण अवतार है, नरसिंह, राम और कृष्ण। तो नरसिंह है पूर्ण है, राम क्या है पूर्णतर, और कृष्ण भगवान क्या है पूर्णतम है। तो ये सबको समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसमें भी जो है तीन कैटेगरीज है। फिर एक उपनिषद है जिसको प्रभुपाद जी कोट करते हैं, नारायण उपनिषद। तो उसमें क्या बताया है, नारायणात ब्रह्म जायते, नारायणात प्रजापति जायते, नारायणात इंद्रो जायते, नारायण अस्तो वस्वो जायते, नारायणात एकाशद रुद्र जायते, नारायणात द्वादश आदित्यः। अभी नारायण भगवान से क्या क्या आ रहा है यहाँ उल्लेख आया है, बताते हैं कि नारायण से ब्रह्मा जी आते हैं, फिर नारायण से शिव जी आते हैं, फिर नारायण से इंद्र आते हैं, आठ वसु वो होते हैं प्रकट होते हैं, फिर ग्यारह रुद्र है उनका प्राकट्य होता है, उसके पश्चात बारह आदित्य है, सूर्य के बारह प्रकार है। तो आप लोगों ने वृंदावन में एक नाम सुना होगा, मदन मोहन जी के पास कभी जाएंगे, जब भी आप ऊपर पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उस पहाड़ का पहले नाम था द्वादश आदित्य टीला। ये नाम क्यों पड़ा, कोई है यहाँ रिसर्च स्कॉलर, ये नाम क्यों पड़ा द्वादश आदित्य टीला? हाँ, हाँ, प्रभु जी बता रहे कि कृष्ण भगवान जब भी लेट गए थे तभी शिव यानी सूर्य भगवान जो है उन्होंने उनको प्रकाश दिया। तो जब भी कृष्ण भगवान ने कालिया दमन किया तो कृष्ण को थोड़ा ठंड ठंड लग रहा था, तो जब भी कृष्ण को ठंड लग रहा था तो शिवजी सॉरी अपने सूर्य देव ने अपने आप को बारह रूप में विभाजित किया। जैसे लाइट होता है इसमें 1 वाट से होकर 10,000 वाट तक होता है, ठीक है लाइट। तो उसी प्रकार जो है यहाँ बताया गया है कि 12 आदित्य जो है, जैसे भगवदगीता में भी भगवान क्या बताते हैं, आदित्यानाम अहम विष्णु, ठीक है 10वें अध्याय में। तो अभी चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है जिसके अंतर्गत जो है कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान के अभी अलग अलग जो है जो अवतार है विस्तार है उसके बारे में अभी हम प्रयास करेंगे बताने का। उसमें बताते हैं स्वयं रूप स्वयं प्रकाश तद एकात्म प्रभाव वैभव विलास अवतार आवेश और जीव, ये 9 कैटेगरीज हो गए, ठीक है। तो अभी इनको हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। तो कविराज गोस्वामी लिखते हैं, अभी हम पहला समझने का प्रयास करेंगे स्वयं रूप। अभी स्वयं रूप क्या है, फर्स्ट कैटेगरी, स्वयं रूप स्वयं प्रकाश दुई रूप स्पृही स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। वो बताते हैं कि भगवान का जो कृष्ण भगवान जो स्वयं है स्वयं रूप है वो 2 हाथ वाले श्याम सुंदर है, ठीक है। वही जो है उनका विस्तारित रूप है स्वयं प्रकाश, उनको बलराम जी को भी स्वयं प्रकाश कहा जाता है। तो इस प्रकार वो 2 रूप में स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश के रूप में वृंदावन में लीला करते हैं कृष्ण और बलराम जी के रूप में। तो ये समझ में आ गया सबको। अभी स्वयं प्रकाश जो है बलराम जी है, तो बलराम जी को वैभव प्रकाश भी कहा जाता है। अभी दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि जो भगवान के जो वैभव प्रकाश का मतलब है कि जितने भी बलराम जी से विस्तारित रूप आते हैं, तो बलराम जी से पहला जो विस्तारित रूप है वो है महाशंकरषण। तो महाशंकरषण से 4 विष्णु आते हैं, वसुदेव शंकरषण प्रद्युम्न अनुरुद्ध। फिर इसमें जो शंकरषण है उसमें से दूसरे विष्णु आते हैं, तो उसमें से फिर और एक चतुर्व्यूह आता है वसुदेव शंकरषण प्रद्युम्न अनुरुद्ध, ठीक है। तो उसके बाद में जो दूसरा चतुर्व्यूह है उसमें से और एक नारायण आते हैं, उस नारायण से फिर 3 विष्णु आते हैं, ठीक है। जो ये 3 विष्णु जो है, तो इसको प्रभुपाद जी भगवदगीता के 7वें अध्याय में 4वें श्लोक में एक तंत्र है सात्वत तंत्र, उसमें से एक श्लोक बताते हैं। तो श्लोक को हम समझते हैं कि इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये श्लोक है विष्णु स्त्रोत्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि अथो विदो एकम तो महत्षष्ठे द्वितीयम तो अंड संस्थितम तृतीय स्वभूतम स्तम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। तो यहां बताया है कि सृष्टि की रचना में भगवान तीन रूप धारण करते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो अभी ये महाविष्णु क्या है कि उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है उनके शरीर से, जैसे एक आलू का पेड़ है जमीन में ज्यादा से ज्यादा 10-12 आलू निकलते हैं। तो भगवान के जितने भी शरीर में रंध्र है, किसी को मालूम है हमारे शरीर में कितने रंध्र है? लोम, लोम, लोम का मतलब है ये बाल। हमारे शरीर में कितने बाल है? हाँ, 3.5 करोड़, ग्रेट। हाँ, तो आप देखते हैं कि महाविष्णु के शरीर से जब एक वो सांस छोड़ देते हैं तो उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल जाते हैं, जब भी सांस लेते हैं वो सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में फिर से आ जाते हैं। तो जितने भी ब्रह्मांड प्रकट होते हैं तो उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु क्या करेंगे, उसमें आधा पानी भर देते हैं, आधा पानी भर के उसमें वो लेट जाते हैं, फिर उनके नाभि से जो है एक कमल प्रकट होता है, तो उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जैसे समझो एक कोई मारुति कार का फैक्ट्री है, डेली 100 कार निकलते हैं, तो 100 कार 100 लोगों ने खरीदा तो कितने ड्राइवर लगेंगे? 100 ड्राइवर लगेंगे। उसी प्रकार जितने भी ब्रह्मांड है उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं, शयन करते हैं, लक्ष्मी जी उनका चरण दबाती है, तो ब्रह्मा जी का जन्म होता है। फिर ब्रह्मा जी को 1000 दिव्य युग तक, साल तक वो ध्यान करते हैं, तब जाके ब्रह्मा जी को भगवान पूरा पेटेंट देते हैं, पेटेंट का मतलब ज्ञान देते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। फिर ब्रह्मा जी जो है इस धरती में, आप देखते कि वो जो कमल का जो ये है नाल है, तो उसमें 14 ब्रह्मांड है, तो इस 14 ब्रह्मांड का जो रचना ब्रह्मा जी करते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, किसी को मालूम है ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 साल नहीं है, सबकी आयु 100 साल है, लेकिन ब्रह्मा जी का उम्र 311 करोड़ 400 अरब, अंग्रेज में 311 ट्रिलियन और 400 बिलियन कहते हैं, जिसको कंप्यूटर में भी आप गिन नहीं सकते ब्रह्मा जी कितनी आयु है। तो समझो अभी वर्षा के मौसम में बहुत सारे कीड़े आके लाइट को टपकते हैं, हाँ उनकी आयु कितनी होती है किसी को मालूम है? 12 घंटा। रात को सूर्यास्त के साथ उनका जन्म होता है, सूर्य होते ही वो नीचे लाइट के नीचे, आपको आप पूरा सब सबको इकट्ठा कर सकते, उनकी आयु कितनी होगी? 12 साल। अगर उनके सामने आपको खड़ा कर दे तो उसके लिए तो आप इंद्र है कि नहीं? 365 डेज इंटू 100 अगर जियेंगे तो अच्छी बात है। तो जो भी है, तो ये समय के अनुसार है, समय जो है देखते कि आध्यात्मिक जगत में समय का कोई प्रभाव नहीं है, वहां हमारे ऊपर समय का प्रभाव नहीं होता है, तो यहां हमारे ऊपर समय का प्रभाव होता है। तो इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी ये 84 लाख योनियों का निर्माण करते हैं। तो अभी हम चलते हैं तीसरा कैटेगरी, अभी तीसरा कैटेगरी है तद एकात्म। तद एकात्म का मतलब है कि बलराम जी, एकात्म का मतलब है कि जैसे राधा कृष्ण, उनको भी एक आत्म कहा जाता है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, उसी प्रकार बलराम जी जो है, कृष्ण और बलराम जी में क्या फर्क है? केवल रंग और धोती। बलराम जी नीले वस्त्र पहनते हैं और कृष्ण भगवान जो है वो पीले वस्त्र की धोती पहनते हैं। तो अभी बलराम जी जो है, बलराम जी से 5 विस्तारित रूप आते हैं, वो क्या है समझ लेते हैं। महाशंकरषण, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और शेष, ये बलराम जी के 5 विस्तारित रूप है। तो इस प्रकार आप देखते हैं ये तीसरा कैटेगरी हो गया। अभी चौथा हम चलते हैं, इसको कहते हैं प्रभाव। अभी प्रभाव क्या होता है, देखो कि जब भी भगवान के जो 24 लीला अवतार है, हम उसमें कुछ कुछ शक्तियां होती है, और स्वयं जब भी कृष्ण भगवान लीला करते हैं तो उसके अंतर्गत की भगवान क्या करते हैं कि द्वारका है, फिर रासलीला करते हैं, उसके अंतर्गत बताया है कि भगवान जो है प्रभाव में क्या करते हैं, 2 प्रकार से। एक है वैभव प्रकाश, जिसमें रासलीला में 2 गोपियों के बीच में कितने कृष्ण थे? 1 कृष्ण थे, ऐसे नहीं कि हर एक गोपी के साथ 1 थे, 2 गोपी के बीच में 1 थे। और द्वारका में 16108 जो रानियां थी उनके बीच में उतने ही भगवान विस्तारित रूप में थे। तो तो जब भी कृष्ण भगवान ये करते हैं, गोचरण में जाते हैं और वन भोजन करते हैं, तो आठ गोप है, भगवान उनके बीच में बैठते हैं, तो सबको लगता है कि कृष्ण हमारे बीच में बैठे हैं। हालांकि अगर वहां आप देखते हैं कि ये है, इसको कहते हैं भगवान का प्रभाव। तो इसके लिए कविराज गोस्वामी लिखते हैं, ये काले द्विभुज नाम वैभव प्रकाश, चतुर्भुज हैले नाम प्रभाव प्रकाश। वो बता रहे कि जब भी भगवान दो भुज धारण करते हैं उसको वैभव प्रकाश कहते हैं, और जब भी वो चार भुज धारण करते हैं द्वारका में उसको कहते हैं प्रभाव प्रकाश। तो अभी पांचवा कैटेगरी है वैभव प्रकाश। तो अभी भगवान के जितने भी चतुर्भुज है, वैकुंठ में भगवान के 24 नारायण के अलग अलग रूप है, शंख चक्र गधा पद्म, वो अलग अलग जो है उसका सर्कुलेशन होता है, रोटेशन समझते हैं, जैसे हम लोगों का जो पुजारी लोगों का रोटेशन होता है, पांच आरतियां होती है तो सबका रोटेशन होता है, किसी का मंगला होता है, किसी का फिर जो है राजभोग संध्या भोग ऐसे। तो ये भगवान के जो 24 अवतार है तो ये वैभव प्रकाश है। तो ये भगवान जो दो भगवान के जो शंख है और जो फूल है, ये भगवान आशीर्वाद देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और गधा और चक्र जो है वो दुश्मनों का जो है खास करके असुरों का वध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी भगवान के जो वैभव जो अवतार है वो क्या क्या है देख लो, कुर्म मत्स्य नर नारायण वरह हयग्रीव पृष्णि गर्भ बलदेव यज्ञ विभु सत्यसेन हरि वैकुंठ अजित वामन सार्वभौम ऋषभ वीक्षकसेन धर्म सेतु सुधामा योगेश्वर बृहदभानु। तो ये भगवान के वैभव अवतार के कैटेगरी में आते हैं, और इसी के अंतर्गत भगवान के जो 24 अवतार है, विष्णु अवतार जो वैकुंठ में है, ये कौन कौन है देख लेते हैं। प्रद्युम्न अनिरुद्ध केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर पुरुषोत्तम अच्युत नृसिंह जनार्दन हरि कृष्ण अधोक्षज और उपेंद्र। ये भगवान के वैकुंठ जगत में जितने भी अलग अलग रूप हैं इनको बताया जाता है। अभी छठा जो कैटेगरी है उसको कहते हैं विलास। तो इसमें धन्वंतरी है, व्यासदेव है, फिर और कुछ भगवान के जो अवतार है इनको कहते हैं विलास कहते हैं। और इसके अंतर्गत भगवान जब भी वृंदावन के बाल्य लीला और पौगंध लीला करते हैं तो इसको भी कहा जाता है विलास। उसके पश्चात आता है सातवा कैटेगरी है, वो है अवतार। तो भगवान के जो अवतार है इसमें प्रमुख छह प्रकार बताए हैं। तो इसमें हम देखते हैं पुरुष अवतार, पुरुष अवतार कितने हैं, तीन है। मनवंतर अवतार कितने हैं, 14। 14 मनवंतर में भगवान अलग अलग नाम है, ठीक है। फिर इसके पश्चात लीला अवतार भागवतम में 22 बताए हैं, और दो का भी वर्णन आता है, एक है हंस अवतार है और एक है हयग्रीव। ये मिला के 24 अवतार हो गए लीला अवतार। फिर उसके पश्चात आता है गुण अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, ब्रह्मा जी इसका ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी उसका संहार करते हैं, इसको कहते हैं गुण अवतार। फिर उसके बाद में युग अवतार, तो भागवतम में भी इसका उल्लेख आता है कि चार युगों में भगवान चार अलग रंग में प्रकट होते हैं। फिर शक्तावेश अवतार, तो किसी को मालूम है शक्तावेश अवतार कितने प्रकार के हैं? शक्तावेश अवतार जो है इसमें भी दो कैटेगरीज है, स्वंश और एक आवेश। स्वंश में भगवान जो है अनंत शेष और शेष, इनको कहते हैं स्वंश, यानी भगवान ही विस्तारित होते हैं। जो शेष है ये जितने भी ब्रह्मांड है उनके सर के ऊपर है, जितने भी जो ब्रह्मांड है, ये जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो शेष के सर में है, और अनंत शेष है वो भगवान के शैया बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो सात भगवान के शक्तावेश अवतार है ये समझ लेते हैं क्या क्या है देख लो। भूधारण शक्ति, जैसे मैंने बताया अनंत शेष है उनको कहते हैं भूधारण शक्ति, तो उनके सर पर सारे ब्रह्मांड जो है उनके सर के ऊपर है। फिर स्वसेवन शक्ति, फिर वो है शेषनाग। फिर आता है भक्ति शक्ति, इसमें है नारद जी। और कोई बता सकता है नारद जी के अलावा और कौन है भक्ति शक्ति? हाँ, आप लोग इस्कॉन में इतने साल से, हाँ प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी को भक्ति शक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने केवल 11 साल में, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी जो है वो पूरी जिंदगी में जिंदगी चला जाता है लेकिन कुछ कमा नहीं पाते, केवल 11 साल में प्रभुपाद जी ने 60 बड़े किताबों को, संस्कृत किताबों को अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया, 108 मंदिर, 10,000 शिष्य से लेके गुरुकुल, बहुत कुछ प्रभुपाद जी ने ये किया। तो ये कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता, तो इसलिए प्रभुपाद जी को भी जो है वो जो है भक्ति शक्ति में गिना जाता है। फिर आता है ज्ञान शक्ति, चतुष्कुमार, व्यासदेव, हाँ ये आते हैं ज्ञान शक्ति, हाँ उनको संपूर्ण ज्ञान है। उसके पश्चात आता है पालन शक्ति, हाँ कोई बता सकता है पालन शक्ति? पालन शक्ति के अंतर्गत कौन आता है? हाँ पृथु महाराज। तो आप देखते कि राजा अंग उनके पुत्र के रूप में जब ही वेण का शरीर से मंथन किया था, पृथु और अर्ची वो प्रकट हो गए थे। तो पृथु महाराज ने बताया गया है कि पृथ्वी का नाम उनसे ही आता है। तो पृथु महाराज ने सारे पृथ्वी को लेवलिंग कर दिया, जमीन को, जैसे हम लेवलिंग करते हैं खेती, किसान जमीन जोतते हैं। और बताया जाता है कि उस समय भूमि जो है उसने सारा अनाज सब कुछ राशन पानी बंद कर दिया था, तो सारे जीव जो है वो तड़प रहे थे। तो सब ये जो है उनके पास गए, उन्होंने कहा कि हमारा जो है संरक्षण करो। तो जब भी उन्होंने पृथ्वी से पूछा ऐसे आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि ये लोग सब लोग लालची हैं, ये लोग जो है कोई भक्ति नहीं करते हैं। तो पृथ्वी महाराज ने जब भी अपना आयुध दिखाया तो पृथ्वी डर गई, तो उसने पृथ्वी सॉरी गाय का रूप धारण किया। फिर भी पृथ्वी महाराज ने उनका पीछा किया। फिर पृथ्वी ने जो है जितने भी जो भागवतम में 5वें स्कंद में इसका पूर्ण उल्लेख दिया है कि किस प्रकार अलग अलग जीवों को पृथु महाराज ने मंथन करके उनके लिए जो भी उपयुक्त आहार है वो उन्होंने बना के दिया, यानी पृथ्वी से प्रकट करके दिया। तो उसके बाद में आता है सृष्टि शक्ति। तो सृष्टि शक्ति कौन है? ये है ब्रह्मा जी। आपको मैंने बताया कि ब्रह्मा जी जो है इस सृष्टि में, पहले ब्रह्मा जी के कितने बच्चे हैं, कितने पुत्र हैं? ब्रह्मा जी बिना शादी किए ब्रह्मा जी ने 10 लोगों का निर्माण किया। उसमें पहले चतुष्कुमार आते हैं, लास्ट में नारद जी आते हैं, ये ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी जो है उनको कहते हैं सृष्टि शक्ति, क्योंकि ब्रह्मा जी प्रजापतियों का निर्माण करते हैं। फिर प्रजापति जो है उनकी शादी होती है, फिर उनके पत्नियों के द्वारा, भागवतम में ये 5वें स्कंद में और 2वें स्कंद में इसका पूरा वर्णन दिया है। तो वो क्या करते हैं, इस सृष्टि में सारे प्रजाओं का, यानी 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव हैं, देवताओं से लेके असुरों से लेके मनुष्य से लेके पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े पंछी पक्षी जो भी है, ये प्रजापतियों के द्वारा निर्माण किया जाता है। तो इसको कहते हैं सृष्टि शक्ति। और अंत में 7वां जो कैटेगरी है उसको कहते हैं दुष्ट दमन शक्ति। तो दुष्ट दमन शक्ति का मतलब है कि इस दुनिया में 2 प्रकार के जीव है, दाओमो पुरुषे लोके, भगवद गीता में भगवान बताते हैं 2 प्रकार के जीव है, एक जो चर ये जिसका पतन होने वाला है, और जो सिद्ध है भगवत धाम में। तो जो असुरी लोग है इस भौतिक जगत में, तो उनका नाश करने के लिए जो भगवान अवतरित होते हैं उसको कहते हैं दुष्ट दमन शक्ति। तो परशुराम जी जो आते हैं वो इसमें आते हैं, इस कैटेगरी में। तो परशुराम ने आप देखते कि क्षत्रियों का 21 बार जो है उन्होंने उनका संपूर्ण नाश किया था। और हनुमान जी भी आते हैं, तो हनुमान जी ने रावण का लंका पूरा जला दिया था, उसको कहते हैं दुष्ट दमन शक्ति। तो अभी ये 8 प्रकार हो गए, अभी 9वां प्रकार है जीव। तो जीव में भी 2 प्रकार है, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। तो हम लोग जो है नित्य बद्ध है, तो हमारे ऊपर किसी की कृपा हो गई, अगर जैसे हम लोगों के ऊपर खास करके प्रभुपाद जी की कृपा है। तो एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में गए थे अपने शिष्यों के साथ, तो किसी ने कहा प्रभुपाद जी ये हमारा अहोभाग्य है, आप भारत से इतनी बुढ़ापे के अवस्था में यहाँ आए, ऐसे कि जैसे एक व्यक्ति गंदे नाली से कीड़ों को निकालता है, तो आपने हमें ये गंदगी से बाहर उबार दिया है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, देखो मैंने तो अपना काम किया है आप लोगों को, आपको उभारने का, लेकिन आप इसको आगे बढ़ाओ, आप जो है भक्ति का प्रचार आगे जो है करते रहो। तो जैसे बताया मैंने, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त, जैसे नारद मुनि है और भगवान के जितने भी वैकुंठ में जितने भी पार्षद हैं, ये लोग है नित्य मुक्त। तो भौतिक जगत में जो 84 लाख जितने भी योनि में जो जीवात्माएं जो भ्रमण कर रही है, तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं, यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमित भाग्य कौन भाग्यवान जीव। तो अभी जैसे मैंने बताया कि इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इस भौतिक जगत में, इसको भगवान की जो संपूर्ण सृष्टि है उसको कहते हैं परयोम। तो इस संपूर्ण सृष्टि में 2/3 है वो है वैकुंठ जगत, ऐसे हमें सोचना नहीं चाहिए कि भौतिक जगत ही ज्यादा है, और 1/3 है यह है भौतिक जगत। तो इसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में जीवात्माएं वो क्या है कि अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी से लेके, रूपा जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी से लेके, जैसे इसमें ब्रह्म संहिता में भी एक श्लोक आता है, यस इंद्रगोपम अथर्वेन्द्रम अहो स्वकर्म बंदानुरूपम फल भाजनोति कर्माणि किंतु निद्रहति किंतु ज भक्ति भाजम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी से लेके इंद्रगोप का मतलब है एक छोटा सा कीड़ा होता है, एक चींटी होती है, उसको कहते हैं इंद्रगोप। तो अभी जितने भी जीवात्माएं हैं वो अपने कर्म के अनुसार, भक्तिनाथ ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले तारी बारे ना देखिनी उपाय। अनादि कर्म का मतलब है कि भौतिक जगत में ये जीवात्मा कब से हम लोग कितने योनि में भ्रमण कर रहे मालूम नहीं। यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान, कौन भाग्यवान का मतलब है कि जैसे भारत में 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, कोई एक व्यक्ति 135 करोड़ में एक व्यक्ति कहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है, हर एक व्यक्ति तो नहीं बन सकता है। तो कौन भाग्यवान जीव। तो अभी हाँ आप देखेंगे आज इस दुनिया की जनसंख्या कितनी है, कोई बता सकता है इस दुनिया की जनसंख्या? हाँ चलो, भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, 138 करोड़ हो गया। तो इस दुनिया में ऐसे यूनाइटेड नेशंस में 198 देश है, तो पूरी दुनिया की जनसंख्या है वो है 800 करोड़ है, कोई 780 कहता है, 800 समझो, 800 करोड़ है इस दुनिया की जनसंख्या, जिसमें भारत की 138 है। तो अभी आप थोड़ा एक अनुमान लगाओ कौन भाग्यवान। तो ये 800 करोड़ में कितने लोग 16 माला करते हैं, पता नहीं आप में से यहां कितने लोग 16 माला करते हैं, मुझे मालूम नहीं। तो अभी हम यही समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति 16 माला कर रहा है डेली, हाँ हो सकता है कहीं उसका वैकुंठ या भगवत धाम कृष्ण लोक जाने का मौका उसको मिल सकता है। तो पूरे दुनिया में इस्कॉन का समझो 150 देशों में प्रचार हो रहा है, तो इस्कॉन के कितने दीक्षित भक्त है इस्कॉन में, कोई जानता है किसने कभी ये किया है? हाँ 1 लाख से भी ज्यादा नहीं है दीक्षित भक्त। चलो वेल विशर प्रसाद खाने वाले बहुत है, आया राम खाया राम गया राम, तो इसमें कोई कमी नहीं है। तो अगर हम देखते हैं कि 800 करोड़ में केवल 1 लाख लोग उन भाग्यवान, यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान। अभी वृंदावन में इतने लोग आते हैं, तो वृंदावन हम लोग यानी जो यात्री लोग आते हैं वो नहीं जानते कि हम वृंदावन क्यों जा रहे हैं। जैसे आप लोग कभी अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहां भी जाते हैं, आपको मालूम है कि आप बीमार है, आपको अलग अलग बीमारियों की जांच करनी है, डॉक्टर से सलाह लेना है, जो डॉक्टर बताएंगे वो ही खाना है कि नहीं। तो उसी प्रकार वृंदावन में भी कोई आता है तो शास्त्रों में उल्लेख आता है कि वृंदावन का जो है तीर्थ यात्रा करने का अर्थ है कि हमारे द्वारा जो जाने अनजाने में जो पाप होता है तो उसका प्रायश्चित करने के लिए हम लोग आते हैं वृंदावन, वो प्रायश्चित करने के लिए, गोलगप्पा खाने के लिए नहीं, रबड़ी या लस्सी पीने के लिए नहीं। हाँ, वृंदावन जो भी आते हैं उसको हमें बताना चाहिए कि आप यहाँ अपने जो है पाप से मुक्त होने के लिए आते हैं। तो जैसे अजामिल के कथन में उल्लेख आता है कि जब ही अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए थे तो उसने अपने बच्चे का नाम लिया नारायण, तो तुरंत चार विष्णुदूत आए, उन्होंने कहा इसको छोड़ दो। तो उन्होंने कहा अरे इस ये व्यक्ति इतना पापी है, इसने कोई प्रायश्चित नहीं किया। तो प्रभुपाद जी भगवद गीता के पहले अध्याय के 42 नंबर श्लोक में तात्पर्य में लिखते हैं कि वो बताते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति मरने से पहले पहले अगर वो प्रायश्चित नहीं करता है, जैसे आजकल आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, जो भी टैक्स है, तो अगर एक व्यक्ति टैक्स नहीं देता है तो फिर गवर्नमेंट आके छापा मारेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार हमारे द्वारा पांच प्रकार के पाप होते हैं जिसको कहते हैं पंच शून्य कर्म। ये मनु संहिता में इसका उल्लेख आता है कि हमारे द्वारा जाने अनजाने में पांच प्रकार के पाप होते हैं और जानबूझ के पता नहीं हम लोग कितने पाप करते हैं। तो इसके लिए एक व्यक्ति को क्या करना होता है, प्रायश्चित। तो भागवतम में दशम स्कंद में भी एक बहुत सुंदर श्लोक है, तीर्थी कुर्वंती तीर्थानि, तो उसमें भी उल्लेख आता है कि जो भगवान के जो भक्त तीर्थ भ्रमण करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो तीर्थों का वो सफाई करते हैं, तीर्थ को साफ करते हैं। लेकिन हम लोग जब भी तीर्थ भ्रमण करते हैं, अभी आप देखते हैं कि वृंदावन का यमुना का क्या हालत है। हाँ, यहाँ इतने बड़े लोग जो है बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बांध रहे, आओ आपको हम ब्रजवासी बनाते हैं, जैसे भगवान ने इनको ठेका दे दिया है। तो भगवान ने इनको क्या ठेका दिया है क्या आप लोगों को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के देने का? ऐसे तो कुछ है ही नहीं। भगवान ने किसी को बोला नहीं कि चलो आपको हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो ये सब लोग ठग है। तो वृंदावन प्रभुपाद जी बताते हैं कि वृंदावन का वास करना दो ही कार्य के लिए है, एक है अपना भजन करने के लिए और एक शरीर छोड़ने के लिए। पहले यहाँ आयेंद्र प्रभु थे जो 24 आवर्स में कीर्तन करते थे। तो एक बार एक भक्त ने उनसे ऐसी जिज्ञासा किया, प्रभु जी वृंदावन में अधिक समय हमें कैसे बिताना चाहिए? तो उन्होंने कहा यहाँ बैठो, कीर्तन 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 में लगे रहो। तो ये वृंदावन में रहने का मतलब है, वृंदावन वास का मतलब है केवल भगवान का भजन कीर्तन, बाकी अपना कुछ जो है अपना जो है अपने लिए एक बढ़िया हवेली, उसमें स्विमिंग पूल, एयर कंडीशन रूम और तीन टाइम बढ़िया बढ़िया भोजन, ये कोई वृंदावन के रहने योग्य ये कोई ये नहीं है वास्तविक में। तो एक ब्रजवासी बताते हैं कि आज के दिन में वृंदावन में चार प्रकार के लोग निवास करते हैं, चार प्रकार के, तो कोई अपराध मत लेना। पहले है जो जिनका वृंदावन में जन्म हुआ है उनको कहते हैं ब्रजवासी, चाहे वो वृंदावन का बंदर हो, चिड़िया हो, जो भी है वो उनका आखिरी जन्म है तो उनको भगवत धाम तो प्राप्त होना ही है, उनको कहते हैं ब्रजवासी, अगर वो ब्रजवासी की तरह रहते हैं, ठीक है। दूसरे हैं ब्रज उपासी, जो ब्रज में उपासना करते हैं, 64 माला, एक टाइम भोजन या 7-8 घंटे पढ़ते हैं, परिक्रमाएं देते हैं, उनको कहते हैं ब्रज उपासना कर रहे, ब्रज की उपासना। और तीसरे जो यात्री आते हैं सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे, आप जानते हैं वृंदावन में ट्रैफिक जाम होता है, ये है जो है ब्रज हासी, यानी वृंदावन का मजाक उड़ाते हैं, अरे हम वो निधिवन गए थे, हमने देखा, हमें तो नहीं लगता है कि भगवान वहां कुछ खाते या सोते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं ब्रज हासी, बस आके गोलगप्पे खाओ मजे करो। तो इनको आके केवल वृंदावन को गंदा करना है, केवल आके वृंदावन को गंदा करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ये तीसरा। और चौथे हैं वो है ब्रजन्यासी, वृंदावन का नाश करने वाले हैं वो है, अभी नाम नहीं लेंगे, तो जो भी बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से लेके यहाँ जो है इसका धंधा करते हैं, क्या है वो, जमीन बेचने का या हवेली बना के बेचने का, जैसे आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, अभी आप वृंदावन में जहां भी जाओ वो प्लॉट प्लॉट ही प्लॉट, जहां भी जाओ आप आपको ये नजर आएगा। तो ये क्या है, ब्रज न्यासी, ये लोग माफिया लोग हैं, तो ये ब्रजवासियों को ठग के उनका जमीन लेके पूरा वृंदावन का नाश कर रहे हैं। तो लेकिन हमें यही याद मालूम होना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने हमें जो तरीका बताया है वृंदावन में रहने का, उसका एक किताब भी है। आप जाएंगे, हमारा एक जो है गिफ्ट स्टोर है, वृंदावन यथारूप, एक हरा सा किताब है, स्पाइरल अंग्रेजी में भी हिंदी में है। तो उसमें वृंदावन में रहने का जो है कला है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो वृंदावन में रहते हैं तो उनको षट गोस्वामी का जीवन चरित्र उसका ये करना चाहिए। वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपालो को। तो हमारे जितने भी गोस्वामी जो रहते थे, किसी गोस्वामी ने अपना ये नहीं बनाया, रहने के लिए अपना झोपड़ी भी नहीं बनाया। तो ऐसे एक लीला आती है रघुनाथ दास गोस्वामी की। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो अपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। तो एक बार वो राधा कुंड के पास बैठे थे ध्यान में, तो राधा रानी आई, तो राधा रानी ने अपने पल्लू उनके सर के ऊपर रख दिया और राधा रानी को खुद पसीना आ रहा था। तो हमारे एक दूसरे गोस्वामी ने देखा, उन्होंने कहा अरे आप अपना भजन कर रहे हैं, हम यहाँ भगवान की सेवा में आए, भगवान से सेवा लेने नहीं आए। तो राधा रानी आके आपके सर के ऊपर पल्लू पकड़ रही है, ऐसे कैसे, ये अच्छी बात नहीं है, आप अपना एक कुटीर बनाओ। फिर एक बार ऐसी घटना हुई कि वो अपने ध्यान में मस्त थे, भगवान की लीला वो ध्यान कर रहे थे, तो दो शेर आए उनके बगल में, पानी पी के चले गए। तो फिर उन्होंने देखा, अरे अभी उन्होंने कहा चलो कि अभी आप जो है एक अपने लिए एक छोटा सा एक झोपड़ी बना दो। तो वृंदावन में हमें मालूम होना चाहिए कि वास्तविक जो रहने का जो ये है वो है भगवत धाम अगर प्राप्ति करनी है। तो ऐसे भी बहुत सारे ब्रजवासी बताते हैं कि भगवान ने हमें सही इसमें रखा है, पोजिशन में रखा है, ताकि हम भगवान को भूल न जाए। ठीक है, फिर इस प्रकार जैसे आपको मैंने पहले बताया कि भगवान के जो अधिक जो चार गुण है, भक्ति माधुर्य, फिर लीला माधुर्य, फिर आता है वेणु माधुर्य, और वेणु माधुर्य के बाद में आता है रूप माधुर्य। तो कविराज गोस्वामी लिखते हैं एक ललित माधव करके बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसमें ये दूसरा ग्रंथ है ललित माधव, तो उसमें बताया है मथुराए ऐसे गंधर्व नृत्य दर्शने, ये उल्लेख आगे आता है, पुनः द्वारका थे ऐसे चित्र विलोकने। तो अभी इसमें दो भगवान के अवतार का आज वर्णन आया है, नारायण जो चार भुजा वाले हैं और कृष्ण दो भुजा वाले हैं। तो अभी यहां वो बताया गया है कि एक बार वासुदेव कृष्ण, अभी ये वासुदेव कृष्ण कौन है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, जो मथुरा द्वारका के जो कृष्ण है, वो बताते हैं कि एक बार वासुदेव कृष्ण जो है उन्होंने गंधर्व नृत्य देखा, गंधर्व नृत्य देखा। गंधर्व समझते हैं आप लोग, जो देवताओं में कैटेगरी है गंधर्व, वो लोग बहुत अच्छा गाते हैं, ठीक है, और वो ऐसे आसमान में उड़ भी सकते हैं, जैसे नारद मुनि भी है वो भी गंधर्व लोक से है, ठीक है। तो बताया कि एक बार कृष्ण भगवान ने गंधर्व नृत्य देखा मथुरा में। तो जब ही उन्होंने गंधर्व नृत्य देखा तो वो बड़े, उनको एक ऐसे एक लालसा हुई कि मुझे भी नृत्य करना चाहिए। ऐसे भगवान द्वारका में मथुरा में डांस नहीं करते, केवल वृंदावन में षड ऐश्वर्य पूर्ण अपना ऐश्वर्य दिखाते। फिर दूसरी बार उन्होंने एक बार क्या किया, द्वारका में कृष्ण भगवान ने, यानी ये वासुदेव कृष्ण ने एक कृष्ण की छवि देखी, कृष्ण का चित्र देखा। ऐसे भी एक उल्लेख आता है कि उन्होंने एक बार ऐसे पत्थर में अपनी छवि देखी, लेकिन यहां ये दिया है कि उन्होंने एक बार कृष्ण का एक छवि देखा, एक पिक्चर देखा और उससे आकर्षित हो गए। समझ में आ रहा है ना। तो अभी अगर आप देखते हैं कि यहां ये जो है भगवान जो है जो चार भुजा वाले हैं, देवकी नंदन वसुदेव नंदन है, तो वो जो है यहां उनका उल्लेख दिया है कि दो बार वो कैसे कृष्ण से आकृष्ट हो गए। तो इस प्रकार देखते हैं कि यहां आज हमने केवल चैतन्य चरितामृत में यहां जो बताया है कि किस प्रकार कृष्ण भगवान वृंदावन में दो भुजा वाले हैं, वही चार भुजा वाले कृष्ण जो है वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे एक हाई कोर्ट के जज होते हैं या वकील होते हैं, वो ऑफिस में क्या है कि अपना ऑफिस का यूनिफॉर्म ड्रेस जो भी वो पहनते हैं, अगर एक कोई पुलिस भी हो, लेकिन वो घर में अपना क्या है कि आराम से रहते हैं, घर में उनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता है। तो उसी प्रकार कृष्ण जो वृंदावन की लीला करते हैं तो अभी ये जो वृंदावन है ये 84 कोस जो वृंदावन है तो इसमें भगवान क्या है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, तो ब्रह्मा जी का एक दिन का मतलब है कि 1000 चतुर्युग। तो अभी 1000 चतुर्युग में 7 अभी मन्वंतर हो गए, 7वां मन्वंतर चल रहा है। अभी जो मन्वंतर चल रहा है इसको कहते हैं वैवस्वत मनु। तो अभी इसी के दौरान क्या हो गया कि भगवान के 3 अवतार हो गए। राम भगवान का अवतार हुआ था कौन से युग में हुआ था? हाँ, लेकिन ये एक मन्वंतर में 71 युग चक्र होते हैं। तो राम भगवान ने कभी कौन से चक्र में ये किया था? 25, 26, 27 या 28वां चल रहा है। हाँ गुड, हाँ 24वें राम भगवान, ऐसे नहीं कि ये पिछले इसमें नहीं आए थे। राम भगवान जो है 24 युग चक्र में आए थे, 24वें, ये याद रखना कभी भी, ठीक है। अभी जो है जो 28 का ये युग संध्या है, तो 2 युग के बीच में एक संध्या होती है 20,000 साल की। त्रेता युग की जो संध्या है उसके अंत में भगवान आए थे और कलयुग के आरंभ में चैतन्य महाप्रभु आए। अभी कलयुग का जो पहला जो 10,000 साल है ये प्रथम संध्या है। संध्या समझते ना, जैसे इसको कहते हैं 3 समय को संध्या कहा जाता है शास्त्र में। सुबह सूर्योदय का समय, संध्या के समय, सूर्यास्त के समय और दोपहर का जो समय है, इनको त्रिसंध्या, तो ये त्रिसंध्या कहा जाता है। लेकिन दोपहर को तो कोई संध्या नहीं है, लेकिन उसको भी संध्या कहा जाता है जब भी हम लोग गायत्री करते हैं। तो इस प्रकार जो विष्णु भगवान है वो क्या है कि सृष्टि में जो भी कार्य करना है तो उनके द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार यहाँ प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य छोटा सा है, सीमित है, तो इसी के ऊपर आधारित जो भी हमने बताने का प्रयास किया। अभी समय बिल्कुल हो गया, अगर किसी को कोई प्रश्न है, केवल 2 मिनट बचे हैं, किसी को कोई जिज्ञासा है आज के इसके बारे में? हाँ जी, यस, देयर इज नो माइक। हाँ क्विक,
कैसे रहना चाहिए?
नहीं, नहीं आपको मालूम है, यू नो हाउ टू लिव।
नहीं पर आप
सब लोगों को आपका फॉलो करना चाहिए, आपको देख के सबको फॉलो करना चाहिए, आपसे प्रेरणा लेना चाहिए।
नहीं नहीं प्रभु जी, मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ।
चलेगा, वो हमारी चेतना ऐसी होनी चाहिए। नहीं सब, मैंने कहा कि आपके पद चिन्हों में सबको चलना चाहिए। आप थोड़ा अपना लाइफस्टाइल सबको बता दो।
ओ कृष्णा,
हरे कृष्णा, गुड। और किसी को कोई प्रश्न है ग्रंथ? हाँ प्रभु जी जल्दी, हाँ प्रभु जी को माइक दे दो।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी भागवतम में एक श्लोक में लिखा था कि भगवान राम लाल वर्ण के हैं।
लाल नहीं, वो हरे हरे वर्ण के हैं, तोते के रंग के।
अच्छा अच्छा,
हाँ ये मैंने जो वाल्मीकि रामायण में बताया।
तो लेकिन ज्यादातर हम लोग सुनते हैं कि सफेद वर्ण के।
नहीं नहीं नहीं, वो अलग अलग युग के अलग अलग अवतार बताए हैं। लेकिन राम भगवान का जो शारीरिक रूप था वो हरे तोते के रंग का।
अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू। हरे कृष्णा।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय।